हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तेरा बनचारी, जमुना जमुना तेरा बनचारी, जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, माधव कुंज बिहारे। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरण सोत सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 33। त्रयः कृत्वा इदं आकर्ण नरो नारी अथवा आद्रिता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। त्रयः कृत्वा इदं आकर्ण्य, त्रयः कृत्वा इदं आकर्ण्य नरो नारी अथवा आद्रिता, नरो नारी अथवा आद्रिता अप्रजासु प्रजतमो, अप्रजासु प्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। નિર્ધનો ધનવત્તમઃ ત્રિયઃ કૃત્વમ ઇદમાકર્ણ્ય નરો નારી અથવા ધૃતા અપ્રજા સુપ્રજતમો નિર્ધનો ધનવત્તમઃ. હરે કૃષ્ણ. પઢીએ. ત્રિયઃ કૃત્વા ઇદમાકર્ણ્ય નરો નારી અથવા ધૃતા અપ્રજઃ સુપ્રજતમો નિર્ધનો ધનવત્તમઃ. ત્રિયઃ કૃત્વા ઇદમાકર્ણ્ય નરો નારી અથવા ધૃતા અપ્રજઃ સુપ્રજતમો નિર્ધન ધનવત્તમઃ. ત્રિકૃત્વમિદમાકર્ણ્ય નરો નારી અથવા ધૃતા અપ્રજા સુપ્રજતમો નિર્ધનો ધનવત્તમઃ. માતાજી, ત્રિકૃત્વમિદમાકર્ણ્ય નરો નારી અથવા ધૃતા અપ્રજા સુપ્રજતમો નિર્ધનો ધનવત્તમઃ. શબ્દાર્થ, ત્રિયઃ તીન બાર, કૃત્વઃ ઉચ્ચારણ કરકે, ઇદમ યહ, આકર્ણ્ય સુનકર, નર મનુષ્ય, નારી સ્ત્રી અથવા યા, આદ્રતા સમાદરિત, અપ્રજઃ સંતાનહીન, સુપ્રજતમ અનેક સંતાનોવાળા, નિર્ધન ગરીબ, ધનવત્તમ ધનવત્ત ધની, તમઃ સર્વાધિક. અનુવાદ એવું તાત્પર્ય શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે દ્વારા. ચાહે નર હો યા નારી, કોઈ ભી મહારાજ પૃથુ કે ઇસ વૃતાંત કો અત્યંત આદરપૂર્વક સુનતા હૈ, ઓર યદિ નિ સંતાન હૈ તો સંતાન જૂત, ઓર યદિ નિર્ધન હૈ તો ધનવાન બન જાતા હૈ. દોહરાયેંગે, ચાહે નર હો યા નારી, જો કોઈ ભી મહારાજ પૃથુ કે ઇસ વૃતાંત કો અત્યંત આદરપૂર્વક સુનતા હૈ, વહ યદિ નિસંતાન હૈ તો સંતાન જૂત, ઓર યદિ નિર્ધન હૈ તો ધનવાન બન જાતા હૈ. બ્રહ્મચારી કે લિયે નહીં હૈ, બ્રહ્મચારી કે લિયે શ્રુતિ ફલ પહેલે બતા દિયા ગયા કે બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ વર્ચસ્વી. અગર બ્રાહ્મણ અર્થાત કોઈ બ્રહ્મચારી વૃતાંત કો સુનતા હૈ તો વહ બ્રહ્મ તેજ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ અથવા ભક્તિ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ. અલગ અલગ પ્રકાર કે લોગો કે લિયે અલગ અલગ શ્રુતિ ફલ દિયા ગયા હૈ. ઇસલિયે કહા ગયા, જો કોઈ ભી નર હો નારી હો અથવા સકામી હો યા નિષ્કામી હો યા મોક્ષકામી હો, કોઈ ભી ઈચ્છા સે અગર ઇસ પ્રસંગ કો સુનતા હૈ તો ઉસકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ. યે સંસાર મેં વિજય પ્રાપ્ત કરના ચાહતા હૈ તો વિજયી હોતા હૈ, કોઈ ભી ફલ પ્રાપ્ત કર સકતા હૈ. ચાહે નર હો યા નારી, જો કોઈ ભી મહારાજ પૃથુ કે ઇસ વૃતાંત કો અત્યંત આદરપૂર્વક સુનતા હૈ वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। निर्धनो धनवत्तम। तात्पर्य, भौतिकता व्याधि व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, वे विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उनके मनोरथ पूरे हों। ऐसे व्यक्ति श्रीश्वर्य प्रजेप सभ कहलाते हैं। श्री का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन, प्रजा का अर्थ है संतान तथा इप्सवह का अर्थ है इच्छुक। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। जो दिन हैं वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे कि उन्हें अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस श्लोक का सुप्रजतम अनेक बच्चों से घिरा हुआ, अनेक बच्चों से घिरा हुआ। सुप्रजतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है किसी के अनेक संतानें हों किंतु उनमें से एक भी योग्य न निकले। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य, धनी, सुंदर तथा बलशाली होंगी। सुप्रजतम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रियः कृत्वम् इदम् आकर्ण्य नरो नारी अथवा धृता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तम। इस श्लोक में पृथु महाराज के चरित्र और उनके इतिहास को जो कोई श्रवण करता है तो उसका क्या श्रुति फल होता है, इसमें विचार किया गया है। ऐसे भागवत का सबसे बड़ा लाभ है सुनने का, वो भगवत प्राप्ति कराता है। भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान। भागवत में गौर चीजों की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो संसारिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र पौत्र समन्वित होना चाहते हैं, उनके लिए भी इसमें स्थान दिया गया है। कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो भागवत से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भागवत सुनने से भगवान की भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन में भागवत को सुन करके भगवत प्राप्ति कर लिए। इसलिए कहा गया कि भागवत को श्रद्धा पूर्वक, इसके सुनने का मूल्य क्या है कि श्रद्धा होना चाहिए। जो कोई भी श्रद्धा से इस भागवत को सुनता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अगर भगवान की प्राप्ति चाहता है तो भगवत प्राप्ति कर लेता है, पुत्र प्राप्ति करना चाहते तो पुत्र प्राप्ति कर लेता है, धन प्राप्त करना चाहते धन प्राप्त कर लेता है, चाहे वो नारी हो या नर हो, कोई भी। महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदरपूर्वक सुनता है तो उस अगर निसंतान है तो संतान प्राप्त कर लेता है, अगर निर्धन है तो धन प्राप्त कर लेता है। और पीछे के श्लोक में हम लोग पढ़े कि अगर वह ब्राह्मण है तो ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेता है, अगर क्षत्रिय है तो विश्व का राजा हो जाता है, अगर वैश्य है तो बहुत पशुओं और वैश्यों का राजा हो जाता है, अगर शूद्र है तो भक्त बन जाता है, शूद्र भक्त बन जाता है, उत्तम कोटि का भक्त बन जाता है। तो उसी तरह से आगे इस श्लोक में वर्णन है कि निर्धन धनवत्तमा, निर्धन है तो धनवान हो जाता है, भगवान की कृपा से वो धनवान हो जाता है। जैसा कहा गया है कि भगवान की कृपा अगर किसी पर होती है तो वो लंगड़ा आदमी भी पहाड़ चढ़ जाता है, और बहरा आदमी जो है सुनने लगता है, और अंधा अगर है तो उसको दिखाई देने लगता है। बहरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब है वो राजा बन जाता है। तो वही बात इसमें भी दोहराई है कि निर्धन धनवत्तम, निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। कैसे कि पृथु महाराज के विषय में वो सुन करके पढ़ करके वो योग्यता प्राप्त कर लेता है। भागवत जो है, भागवत में विभिन्न प्रकार के भक्तों का चरित्र दिया है। जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र है, उन्हें ईश्वर चाहिए था तो ईश्वर प्राप्त कर लिए। प्रहलाद महाराज भक्ति चाहिए तो भक्ति प्राप्त कर लिए। युधिष्ठिर महाराज को भी राज्य प्राप्त करना तो राज्य प्राप्त कर लिए। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से युक्त होकर जो कोई भी भागवत के सान्निध्य में आता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो इसका मूल्य क्या है, अत्यंत आदर पूर्वक, लौल्यम मूल्यम एकम, इसके सुनने के लिए मूल्य क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ पढ़ाई करने के लिए जाता है तो पहले फीस भर देता है, ट्यूशन करना है तो ट्यूशन भर देता है, कंप्यूटर सीखना है तो कोर्स करने से पहले पैसा जो है भर देना पड़ता है। तो भागवत सुनने के लिए भी मूल्य है। जैसे आजकल भागवत लोग सुनने के लिए कथाकार को पैसा देते हैं कि 1 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक भी बात लोग करते हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत सुने तो कोई पैसा नहीं दिए थे, वो केवल लौल्यम सुनने के लिए उनके पास लौल्यम था, अत्यंत उत्सुक थे, वो सुनना चाहते थे, यही मूल्य है। भागवत सुनने के लिए और कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एक मूल्य है कि लौल्यम होना चाहिए, उसके लिए आदर होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए। और भागवत सुनने से ही वो साध्य और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। भागवत सुनना साध्य भी है और साध्य की प्राप्ति भी है, सिद्धि भी है, साध्य और सिद्धि दोनों है। ऐसा कहा जाता है कि गीता जो है करने के लिए है और भागवत केवल सुनने के लिए है। भागवत केवल सुनना है और गीता सुन करके करना है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया तो भगवान ने कहा कि ये करना है। मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। युद्ध करने के बाद तब उनको साध्य की प्राप्ति हुई, लेकिन परीक्षित महाराज को केवल सुनने से सिद्धि प्राप्त हो गई। भागवत में कोई उद्योग नहीं, कोई श्रम नहीं है, कोई मूल्य नहीं देना है, केवल सुनना है। इसलिए यहां कहा गया त्रिकृत्व इदम आकर्ण्य, त्रिकृत्व इदम आकर्ण्यम, इसको अपने कान से तीन बार सुनना है। अगर कोई पृथ्वी महाराज की इस चरित्र को तीन बार सुनता है तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संसार में सभी लोग सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। कोई भौतिक संपदा प्राप्त करना चाहता है, कोई यश प्राप्त करना चाहता है, कोई बहुत धनी होना चाहता है, कोई बहुत यशस्वी होना चाहता है, कोई बहुत सुंदर होना चाहता है, तो सुंदरता भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा गया कि भागवत सुनने से, भागवत सुनना भक्ति का प्रथम अंग है, तो भागवत सुनने से वो परम सुंदर हो जाता है। श्रीय श्रीय ऐश्वर्य प्रजेप सब, श्रीय माने सुंदर हो जाता है, ऐश्वर्य माने धन प्राप्त कर लेता है, प्रजेप सब माने निसंतान है तो पुत्र प्राप्त कर लेता है। श्रीय कैसे सुंदर हो जाता है, मान लीजिए वो कुरूप है, वो काला है तो गोरा कैसे हो सकता है या लंगड़ा है तो सीधा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, असंभवम भी संभव हो सकता है। जैसे कहा गया कि काक हो ई बक, कौवा जो है बगुला हो जाता है, काक हो ई बक पिकऊ मराला, और कोयल जो है हंस हो जाती है। जो कौवा है वो सफेद बगुला की तरह हो जाता है, काक हो ई बक पिकऊ मरा, और कोयल जो है हंस हो जाती है। जो बहुत कुरूप है कोयल की तरह काला है तो भी सुंदर हो जाता है। जैसे कुब्जा, कुब्जायाम किम रूप अधिकम, कुब्जा को कहां सुंदरता थी, कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी, त्रिबक्री, उसका शरीर तीन जगह से वक्र था। भगवान भी त्रिवक्र हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं। तो भगवान ने मथुरा में जब भगवान जब गए तो उनको एक जोड़ी मिल गई थी। श्रीधर स्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान भी त्रिवक्रा हैं और त्रिवक्री, माने कुब्जा को देख करके बहुत खुश हुए। तो कुब्जा को भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, कस्त्वम, आप कौन हो, आप कहां जा रही हो, आप किसकी हो, माने आप किसकी पत्नी हो। तो कुब्जा का विवाह नहीं हुआ था, वो त्रिबकरी थी, उसका शरीर कुरूप था, तो कोई किसी से विवाह नहीं की थी। तो भगवान ने कहा कि आप किसकी पत्नी हो, तो कुब्जा को अच्छा नहीं लगा, वो सोची ये व्यंग कर रहे हैं। नहीं, भगवान इतने मधुर बोल रहे थे कि उसको कान को बहुत सुंदर लगा, तो वो देखी तो देख करके बहुत खुशी हुई, देखने से उसके नेत्र को बहुत आनंद मिले। भगवान को जो देखता है तो नेत्र का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को देखने से व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। तो कुब्जा जो है भगवान को देखते रह गई और भगवान के सुंदरता को वो नकसिख देखने लगी और सोची कि ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसी जुगल जोड़ी उसने कभी नहीं जीवन में देखा था। कृष्ण बलराम को देख करके उसको बहुत आनंद हुआ, क्या श्रृंगार वही वर्णो राजा वही के श्रृंगार वही पे छाजा। ऐसे कवि लोग वर्णन करते हैं कि भगवान के श्रृंगार का वर्णन कोई क्या कर सकता है, क्या उपमा क्या अलंकार लगा सकता है। उनका श्रृंगार और उनका सौंदर्य उन्हीं के अनुरूप है और दूसरा उपमा नहीं है, और कोई उपमा उपमेय नहीं है। भगवान की सुंदरता का लोग उपमा देते हैं कि भगवान चंद्रमा चंद्रमुख है, चंद्रमा जैसा मुख है, भगवान कमल नयन है, भगवान का चरण भी चरण कमल है, लेकिन कमल से बहुत अधिक सुंदर है। कमल तो मुरझा जाता है, सूख जाता है, चंद्रमा भी कभी घटता है कभी लुप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की सुंदरता, भगवान का जो चंद्रमुख है नित नवनीत होता है, नित नवीन होता है, और नित नवीन उसमें सुंदरता का उद्रेक होता है, सुंदरता का प्रकाश होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम कहां जा रही हो, किसको चंदन ले जा रही हो। तो कुब्जा ने भगवान के मनोभाव को समझ करके उनके शरीर को सजा दिया और थोड़ी भक्ति से भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। तो यहां श्रेय है, माने भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है। तो कुब्जा सुंदर हो गई, श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप सब, और इतनी सुंदर हो गई कि लक्ष्मी जी के कटघरी में आ गई, इतनी सुंदर हो गई। तो इसके पीछे इतिहास यह है कि भगवान की सेवा से भक्ति से वो सुंदर हो गई। काक भुसुंडी जी कौवे के शरीर में रहते हैं, हनुमान जी बंदर के शरीर में, लेकिन भगवान की भक्ति से वो सुंदर हैं। शिव जी श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, हड्डी पहनते हैं, लेकिन भक्ति से वो सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी बहुत सुंदर हैं, और इतने सुंदर हैं कि गंगा जी भी उनके मस्तक पर निवास करती हैं, इतने सुंदर हैं कि चंद्रमा भी उनके मस्तक पर विराजमान है, इतने सुंदर हैं कि विष भी उनके अंदर सुंदर हो गया, जो सुंदर नहीं है वो भी सुंदर हो गया संसर्ग से, हलाहल विष भी उनके गले में मुक्तामाला की तरह सुंदर हो गया। जो हलाहल विष से सब लोग भाग गए थे, सब देवता लोग भाग रहे थे, सारे लोग हाहाकार कर रहे थे, वो विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया और विष का प्रभाव जो है नगण्य हो गया, और वो विष जो है जो लोगों को मार देता है, लोगों को कुरूप बना देता है, मृत्यु को प्राप्त करा देता है, वो उनके लिए सुंदर हो गया। क्योंकि भगवान अति सुंदर हैं, और उनके संसर्ग में असुंदर व्यक्ति भी जाता है, कुरूप चीज भी जाता है, अनुपयोगी वस्तु भी जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो हर जगह से रिजेक्टेड है, वो भी सुंदर हो जाता है। तो भगवान शिव के गले में वो नीलमणि की तरह सौंदर्य से विभूषित हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति से। तो श्रेय ऐश्वर्य, श्री ऐश्वर्य को जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है वो प्राप्त कर लेता, केवल सुनने से। तो गीता में भगवान आदेश देते हैं कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। लेकिन भागवत में ऐसा कुछ नहीं, भागवत केवल कहा गया श्रवणम, श्रवण मंगलम, भागवत सुनने से ही उसका मंगल हो जाता है। वो बहुत लेजी है, बहुत कुछ नहीं करना चाहता है, और कुछ है उसको ज्ञान भी नहीं है, तो केवल भागवत सुनने से, और भागवत सुन के सर्व सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे देवी देवताओं की पूजा लोग करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई दुर्गा की पूजा करता है, प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि संसारिक लोग देवी दुर्गा शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उनके मनोरथ पूरे हों। देवी की पूजा क्यों लोग करते हैं? देवी की पूजा करने से सांसारिक लाभ प्राप्त होता है, सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः, मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाधा नमस्तुते। पाठ करते हैं नवरात्रि में स्वाधा स्वाधा नमस्तुते। शरणागत दिनारतम परित्राण प्राणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा जी को नारायणी कहा गया है, भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की सेविका है। क्या देती हैं? सर्व बाधाओं को, सर्व बाधा विनिर्मुक्त हो। धन्य धान्य सुतान्वित, धन्य धान्य से सुतान्वित। निसंतान है तो संतान देती। मनुष्य मत प्रसाद देना भविष्यति न संशय। कैसे देती हैं कि भगवान के, वो भगवान की खजांची हैं। जैसे पुरुष जो है घर में सब कुछ ले आता है, तो स्त्री को भी अधिकार होता है देने के लिए। तो उसी तरह भगवान के द्वारा कुछ वर प्राप्त की है दुर्गा जी। दुर्गा जी का भी विभिन्न नाम है, काली चंडी भद्रकाली महाकाली रुद्राणी पार्वती जोगमाया महामाया, सब अलग अलग रूप है, अलग अलग कार्य करती हैं। तो भगवान ने उनको वर देने के लिए नियुक्त किया है कि अब ये चीज दे सकते। जो देवी की आराधना करता है तो उसको भी संसारिक फल मिलता है, लेकिन वो फल जो है चिरस्थाई नहीं होता है, कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो जो कुछ भी प्राप्त करता है वो जन जन्मांतर रहता है, वो नश्वर नहीं, अक्षय फल। भगवान की भक्ति करने से जो भी प्राप्त होता है वो अक्षय होता है, अव्यय, अव्ययम, जो कभी व्यय नहीं होता है। योगी लोग इसीलिए, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भगवान के शरण में जाते हैं। देवी देवता शिव ब्रह्मा दुर्गा जो भी देते हैं वो अल्प देते हैं और अल्पकालीन होता है, अल्प मात्रा में होता है और अल्पकालीन होता है। और वो फल में भी अनिष्ट भी होने का डर रहता है, थोड़ा भी नियम में त्रुटि होता है तो अनिष्ट कारक होता है। जैसे देवी की पूजा जड़ भरत के प्रसंग में देवी की पूजा करने वाले लोग गलती किए तो देवी जी ने उन लोगों को ही संहार कर दिया। देवी देवताओं की पूजा करने में बहुत भय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा गलती हो गया तो इंद्र प्रलय के मेघों को आदेश देते कि इन लोगों को तहस नहस कर दो, खत्म कर दो, सारे गाय और ग्वालों को नष्ट कर दो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है अल्प मेध सा, अल्प बुद्धि वाला है, क्योंकि वो जानता नहीं इसका क्या हानि है क्या लाभ है। देवताओं की पूजा में हमेशा खतरा है। और देवताओं के विषय में कहा गया कि वो लोग लेते हैं सुमेरु पर्वत के बराबर और देते हैं सरसों के दाने के बराबर। और भगवान की भक्ति में कि भगवान लेते नहीं हैं, कोई स्प्रिया नहीं रखते हैं, वो लेंगे भी तो बहुत तुच्छ लेते हैं और देते हैं बहुत असीमित मात्रा में। सुदामा जी ने केवल चावल दिया था, भगवान उसको ईश्वर दे दिए। जलम चुलके नवा तुलसी दल मात्र न जलम चुलके नवा। अगर भगवान की कोई भक्ति करता है चुलू जल और एक तुलसी दल से भी, तो भगवान उसके बदले में अपने आप को भी देकर ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं दिया हूं। तुलसी दल मात्र जलम चुलके नवा। भगवान कभी भक्त से ये नहीं चाहते कि हमको वो दे। भगवान की भक्ति सरल है और मंगलम, हमेशा मंगल करने वाली, और उसमें भी श्रवण मंगलम, श्रवण करना अत्यंत मंगलकारी है। इसलिए राजर्षियों के सभा में बिरक चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी ने अनेक अनेक सुझावों को सुन करके परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा कि केवल सुनना सबसे श्रेयस्कर है। सबसे श्रेयस्कर क्या है इस भौतिक जगत में, और सरल क्या है, और सबसे बड़ा कल्याणकारी क्या है? तो भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने से ही जीव का परम मंगल हो जाता है, और कोई साधन करने से नहीं होता है जितना श्रवण करने से। तो इसलिए जो निर्धन है, जो संतानहीन है, या ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या संसार में विजयी होना चाहता है, या यशस्वी होना चाहता है, या त्रैलोक्य का राज प्राप्त करना चाहता है, या वैकुंठ पति को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान के विषय में पृथु महाराज का चरित्र सुनने से वो प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशयम। इसलिए जो भी, जो कोई भी भक्त, भक्त हो या अभक्त हो, स्त्री हो या पुरुष हो, नर नारी, यहां आया है नरो नारी अथवा द्रिता, कोई भेद नहीं है। इवन पशु भी, वृक्ष जोनी भी, वो भी लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे काकभुसुंडी जी सुनने से वो भक्त पूजनीय हैं, हनुमान जी देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, जो हनुमान जी की पूजा करता है वो भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान की, भगवान राम के पास जाना हो तो हनुमान जी उसको रास्ता बताते हैं, गुरु की तरह वो उसको मार्गदर्शन करते हैं। शिव जी भी गुरु की तरह मार्गदर्शन करते हैं। कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, शिव जी हनुमान जी भक्ति भगवान की देते हैं, क्योंकि परम वैष्णव हैं। तो ऐसे भगवान की कथा की इतनी महिमा है, और खास करके इस प्रसंग को सुनने से आकांक्षी, कोई भी चीज की आकांक्षी है, लोकेशणा वितेषणा पुतेषणा, तो प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा गया कि संसार में लोग अर्थ प्राप्त, जितने संसार में लोग आते हैं, पहले अर्थ धर्म काम मोक्ष, इससे जुड़ करके लोग भक्ति में आते हैं। बहुत कम लोग निष्काम भक्ति में आते हैं। अर्थ कामी हो या निष्कामी हो या सर्व कामी हो या अनर्थ के दृष्टि से भी, कोई कोई लोग भक्ति करने आते हैं कुछ किसी का अनर्थ करने के लिए, नुकसान करने के लिए। कुछ लोग जप करते हैं कि उसका ये हो जाए, नुकसान हो जाए, उसका बड़ा पद है वो पद चला जाए, या हम राजा बन जाए, हम विजय प्राप्त कर लें उसके ऊपर। तो वो उसकी भी मनोकामना की शुद्धि हो जाती है, उसकी इच्छा शुद्धि हो जाती है, और वो भी विमल भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। और उसके मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां हैं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। संसार में खास करके जो गृहस्थ होते हैं, चार छह चीज प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थागमो नित्यम रोगिताच, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वत्सश्च पुत्र अर्थ करी च विद्या, षड्जीव लोकस सुखानि राजन। कोई लोग इस संसार में बहुत योग्य संतान चाहते हैं, और वो सुंदर हो, धनी हो, बलशाली हो, तो वो भी प्राप्त कर लेते हैं। क्या करने से? जो इस वृत्तांत को तीन बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात और सम्माननीय हो जाता है, और निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाता है। कोई कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल मूर्ख है, तो विद्वान हो जाता है। भक्ति ज्ञान विराग, भक्ति ज्ञान और वैराग को प्राप्त कर लेता है। सुनने से। निरक्षर यहां लिखा गया, मैंने उसको लिखने नहीं आता है तो भी विद्वान बन जाता है। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि वह दुर्भाग्य को दूर भगाता है, और उसके जो भी दुर्भाग्य हैं वो दुर्भाग्य सौभाग्यशाली हो जाता है सुनने से, और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। सर्वै गुणै तत्र समासते, सब दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। तो प्रसंग को और श्रद्धा से सुनना चाहिए, लौल्यम लौल्य होना चाहिए, नहीं तो फल में भेद हो जाता है। जैसे धुंधकारी भागवत सुने तो उनके लिए विमान आ गया, और भी गांव वाले सुन रहे थे उनके लिए विमान नहीं आया। तो परीक्षित महाराज प्रश्न किए कि ये श्रुति फल भेद क्यों हो गया, सब लोगों ने कथा सुना लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, क्योंकि धुंधकारी ने बहुत श्रद्धा और लौल्यम बहुत उत्सुकता पूर्वक सुना था। तो सुनने वाले बहुत हैं लेकिन भेद अलग अलग हो जाता, फल भेद अलग अलग होता है। तो अगर कोई संपूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण एकाग्रता से सुनता है तो उसको फल श्री प्राप्त हो जाती है, कोई भी कामना की पूर्ति प्राप्त कर लेता है, चाहे संसारी कामना हो, चाहे आध्यात्मिक कामना हो, चाहे इस लोक की प्राप्ति करना है, चाहे भौतिक लोक की प्राप्ति करना है, चाहे राजा बनना चाहता है, वो प्राप्त कर लेता है। ये भागवत में जो कहा गया है ये सत्य है, परम सत्य है। तो आगे और भी बहुत सारा चीज दिया है, आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए।
हरे कृष्णा। प्रभु, भागवत कथा सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाता है, और पृथु महाराज का चरित्र तीन बार सुनने से धन प्राप्ति होता है और संतान भी प्राप्ति होता है। पृथु महाराज का चरित्र भागवतम का एक हिस्सा है, इसलिए अगर हम भगवान से मांगेंगे कि हम केवल तीन बार नहीं, हम 100 बार भी सुनने के लिए तैयार है पृथु महाराज का चरित्र, हमको धन भी दे दो, संतान भी दे दो, भगवत प्राप्ति भी दे दो।
तो हो सकता है, अगर वैसा श्रद्धा विश्वास से अगर आप सुनेंगे, श्रद्धा और विश्वास करके अगर आप सुनते हैं तो जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि भागवत तो वेद व्यास लिखे हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो तो गलत बोलेंगे नहीं। वेद व्यास जो भी बोलते हैं तो वो भगवान बोल रहे हैं, तो यहाँ भगवान कैसे गलत बोलेंगे? गलत तो हमारे अंदर है, हम वैसे सुनते नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान खाते नहीं, भगवान खाते हैं, हमको खिलाने का ढंग नहीं है। भगवान सुनते हैं लेकिन हमको सुनाने आना चाहिए, कैसे हमको सुनाना है। भगवान देते हैं लेकिन हमको मांगने भी आना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे सुदामा जी ने मांगा, वैसे मांगने के लिए तरीका भी होना चाहिए। आप किसी प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका जो विधि है, जो परिपाटी है, उस विधि से जाएंगे तो जरूर मिलता है। तो भगवान पृथु का चरित्र जो है सुनने से प्राप्त होगा, लेकिन वैसा तैयार भी होना चाहिए, अपने को तैयारी करना चाहिए। जैसे कहा गया है नीति शास्त्र में कि जैसे शेरनी होती उसका दूध जो है सोने के पात्र में टिकता है, आप शेरनी का दूध निकालने जाएंगे तो उसकी दूध निकालने से पहले शेरनी आपको खा जाएगी। निकालने का तरीका क्या है और कहाँ रखेंगे, सोने के पात्र में रख सकते हैं। तो शेरनी के पास जाना और दूध निकालना और दूध को धारण करने के लिए पात्र भी होना चाहिए और उद्योग भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए। अब भय होगा तो पहले ही भाग जाएंगे। तो उसी तरह उतना ध्रुव महाराज जैसा साहस होना चाहिए कि जंगल में वो एक पैर पर तपस्या किए, उतना उत्कंठा होना चाहिए, उतना पराक्रम होना चाहिए, तब प्राप्त करेंगे। तो उतना अगर है आप में तो आप प्रयास करिए, प्राप्त हो जाएगा। उतना साहस और हिम्मत है तो कर सकते। भक्ति करने के लिए उतना साहस भी होना चाहिए, उतना लल्लम भी होना चाहिए। कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा।
प्रभु मेरे बारे में, मेरे बारे इसमें नहीं कहा हूँ,
नहीं वो सबके लिए आप कह रहे हैं।
नहीं, मुझे धन और संतान में अभी दिलचस्पी नहीं, केवल भगवत प्राप्ति में दिलचस्पी है। हरे कृष्णा।
ये तो सबके लिए है। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने जैसे बताया, जैसे कि डेमीगॉड्स के बारे में बताया, मतलब देवी देवताओं का पूजा करने से रिस्क रहता है। एक शास्त्रकार ने बताया है जैसे कि अगर देवी देवता को हम लोग पूजा करते हैं, निष्काम रूप से भक्ति करते हैं, निष्काम रूप से पूजा करते हैं, मन में कोई कामना ही नहीं रहता है। अगर हम लोग मन में कोई कामना ही नहीं रखे देवी देवता को पूजा करेंगे, उन्होंने अंत में कृष्ण प्रेम में लगा देते हैं और कृष्ण भक्ति में जुड़ा देते हैं। तो इसीलिए कुछ रिस्की नहीं रहता है। आपने बोला रिस्की है,
सही है। अगर देवी देवताओं से कोई सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसमें रिस्क है, और देवी देवताओं से आप भक्ति चाहते हैं तो ठीक है। जैसे कात्यायनी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा किया, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, उन्होंने कहा कि हे देवी, आप महा उपायनी है, महा उद्योग जानती हैं, महामाया हैं, आप भगवान को हमें प्राप्त कराने में मदद कर सकती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो नंद के प्यारे हैं, जो नंद के सुत हैं, वो हमें पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा हम लोगों की सहायता कीजिए। तो अगर भगवान की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं से आप सहायता चाहते हैं तो अनुकूल है, अनुकूल भक्ति है वो। आप सबसे सहयोग ले सकते हैं, शिव जी से भी, गणेश जी से, हनुमान जी से भी, दुर्गा जी से भी, उनके पास आप भक्ति मांगने के लिए जा सकते हैं। जैसे कात्यायनी की पूजा ब्रज कुमारियों ने किया था और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि देवताओं से, गणेश जी से, हनुमान जी से, शिव जी से आप भक्ति मांग सकते हैं। भक्ति मांगना गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के बहुत नजदीक हैं। एक बार राधाकुंद महाराज बता रहे थे कि शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी भगवान के बहुत करीब हैं, क्योंकि भगवान की लीला में शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, उनके लीला में सहायक हैं, तो भगवान के बहुत करीब हैं, तो उनसे आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी हमेशा लीला में रहते हैं भगवान के, तो उनसे सहयोग लेना गलत नहीं, उनसे भक्ति के अलग चीज मांगना वो गलत है। प्रभुपाद जी भी लिखते समय समय अब हो गया है, समय समाप्त। ठीक ठीक है।
भागवतम में कई बार आता है कि डेमी गॉड्स एंड ऑल अदर सबॉर्डिनेट गॉड्स आर इवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट मीन्स दे आर वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड स्टिल सिंस बिलियंस ऑफ इयर्स, स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो द माइंड ऑफ गॉड, सो व्हाई वी आर ट्राइंग सो मच टू अंडरस्टैंड गॉड।
भगवान को एक बार फिर आवृत्ति करिए।
भागवतम में ऐसा बार बार आता है कि भगवान की लीला कोई समझ नहीं पाता है, देवी देवता भी नहीं, हालांकि वो करोड़ों साल से भगवान की सेवा में है, भगवान के हिसाब से कार्य करते रहते हैं, फिर भी उनकी लीला को वो पहचान नहीं सकते हैं। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, वी हैव गॉट वेरी लेस इंटेलिजेंस।
ऐसा सही कह रहे हैं कि भगवान को समझना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। मोहयंती असुरे, देवता भी मोहित हो जाते हैं। से ब्रह्मा जी भी भगवान के बाल लीला को नहीं समझ पाए, शिव जी भी भगवान के मोहिनी रूप को नहीं समझ पाए, तो हम लोगों की क्या बात है। हम लोगों के लिए समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन भगवान को समझने के लिए जब भगवान कृपा करते हैं तब हम समझ जाते हैं। भगवान के कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, भगवान की कृपा से ही हम समझ सकते हैं। तो इसमें कृपा जरूर होनी चाहिए, हम अपने प्रयास से ही केवल नहीं समझ सकते हैं। तो भक्ति करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से तब हम भगवान को, नहीं तो अपने प्रयास से केवल पर्याप्त नहीं है, देवी देवता भी अपने प्रयास से नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान को समझने के लिए चुनौती या चैलेंज से हम नहीं समझ सकते हैं, समर्पण से। इसलिए भगवान कहे सर्वधर्मान परित्यज्य। जब कोई भगवान को संपूर्ण समर्पण करता है तब भगवान को समझ सकता है, अपने प्रभाव से नहीं समझ सकता है, ज्ञान से नहीं समझ सकता है। नायम आत्मा प्रवचने न लब्ध्वा न मेधया न बहुना श्रुते न। तो कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान को संपूर्ण समर्पण करने से, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान को जब हम समर्पण करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास न बल है न ज्ञान है न धन है न बुद्धि है, हे प्रभु मैं आप कृपा करेंगे तो मैं समझ सकता हूं, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। धन्यता से भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन भगवान के पास हम अपना बुद्धि दिखाएंगे, अपना विद्वता दिखाएंगे तो नहीं समझ सकते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ये जानता हूं। इसलिए भगवान बोले केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। तो समर्पण से भगवान को समझना इजी है, सरल है।
ये तो बात सत्य है कि भगवान की जब तक से कृपा नहीं होगी तब तक से भगवान को कोई नहीं जान सकता। लेकिन चेतन चेतन में वर्णन है कि जब भगवान आते हैं और जब लीला करते हैं तो उनके अद्भुत कार्यकलापों को देखकर, लीलाओं को देखकर भक्त समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान है। हरे कृष्ण।
लीलाओं को देखने के लिए भी, जैसे ब्रह्मा जी लीला देख रहे थे लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए, परीक्षा लेने के लिए गए। शिव जी भी मोहिनी रूप को देख करके विमोहित हो गए। तो भगवान को भगवान ही समझा सकते हैं, अपने भगवान के विषय में भगवान समझाएंगे तभी हम समझ सकते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान समझाए तब अर्जुन समझे। अर्जुन बहुत ज्ञानी थे, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन भगवान को जानने के लिए सबसे सरल कुंजी है कि अपने आप को सब कुछ भगवान के पास दे देना चाहिए, कि हम बिना आपके बताए हुए, बिना आपके समझाए हुए नहीं समझ सकते हैं। भगवान को जब हम उनके चरण में डाल देंगे कि हे प्रभु मैं एक अनाथ एक छोटे बच्चे की तरह हूं, मैं एक महीने के बच्चे जैसा हूं, आप जैसे रखना है रखिए, जैसे संभालना है संभालिए, बिल्कुल असहाय होकर के कि मेरे पास कोई बल नहीं है, बिल्कुल मैं असहाय हूं, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। दिन अपने को दिनहीन बना लेने से भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हैं, और अपना बुद्धि दिखाएगा, अपना चमत्कार दिखाएगा तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं कि जाओ तब तुम अपना बुद्धि दिखाओ। अब भगवान के पास हम अपना क्या बुद्धि दिखाएंगे, अपना क्या चमत्कार दिखाएंगे? कोई थोड़ा सोना बना देता है, कोई धूल को सिक्का बना देता है तो उसी में रह जाता है। भगवान तो अनंत ब्रह्मांड को बनाते हैं, उसमें सोना चांदी कितने पदार्थ असंख्य मात्रा में बनाते हैं। कोई धूल लेकर एक रुपया बना देता है तो सोचता है कि मैं भगवान हो गया, मैं भगवान से भी बड़ा हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा दुष्कर है, अति दुष्कर्म। सरल किसके लिए है? जो बिल्कुल अपने को मूर्ख बनाकर रहता है कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, प्रभु आपके शरण में हूं, आप मुझे देखभाल करिए, तो वो सरल है, सुगम है। त्रिणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।